आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीक्षा है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की बुक फर्स्ट फ्लाइट की यूनिट 7 को, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर 3 स्टोरीज हैं, जिनका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग और टी फ्रॉम असम। स्टूडेंट्स, इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आप सभी पेज नंबर 85 पर आइए। बिफोर यू रीड एक्टिविटी, डिस्कस इन क्लास। फर्स्ट, व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। जब आप हमारे कंट्री के बारे में सोचते हैं, हमारे देश के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में कैसे लोग और कैसी जगह के दृश्य या फिर पिक्चर्स या फिर इमेजेस आते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आप इंडिया के कौन से पार्ट में रहते हैं, आपको ये बताना है, और आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, आपको ये भी बताना है, और साथ ही कुछ ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के यानी जहाँ पर जो टूरिस्ट हैं, जो ट्रैवल करते हैं, यात्री हैं, वो घूमने जाते हों, ऐसी जगहों के आपको नाम बताने हैं। क्वेश्चन 3, यू मे नो दैट पार्ट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड फ्रेंच, द पोर्टुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन हिस्ट्री ऑफ आर कंट्री। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंसेस। द स्टूडेंट्स, इंडिया में ना सिर्फ ब्रिटिश बल्कि डच, फ्रेंच और पुर्तगाली लोगों का भी बहुत ज्यादा दबदबा रहा था एक समय पर, और इन्होंने काफी ज्यादा हमें इन्फ्लुएंस किया है, हम पर इनके रहन सहन का काफी इन्फ्लुएंस आया है। तो आप क्या बता सकते हैं कि फ्रेंच और पोर्टुगीज यानी जो पुर्तगाली लोग हैं, उनका जो रहन सहन है, उसका इन्फ्लुएंस इंडिया के कौन से हिस्से पर आया है। क्वेश्चन 4, कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी और कॉफी। क्या आप ये बता सकते हैं कि इंडिया में टी और कॉफी किन जगहों पर उगाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के साथ आइए हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कि 3 स्टोरीज हैं। आज हम शुरू करेंगे स्टोरी नंबर 1, अ बेकर फ्रॉम गोवा से। तो स्टूडेंट्स, आप सभी पेज नंबर 85 से ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए इस चैप्टर को। अ बेकर फ्रॉम गोवा। This is a pen portrait of traditional Goan villager baker who still has an important place in his society. तो students, इस extract के अंदर ये जो कहानी आपके सामने है, इसमें जो गोवा में villagers हैं, वहां पर उन villages में bakers हैं। Bakers वो जो चीजें bake करते हैं, जैसे जो bread बनाते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनके बारे में ही ये आपके सामने स्टोरी दिखाई गई है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इस स्टोरी को, समरी को जान लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लाइन टू लाइन इस स्टोरी को समझना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, गोवा मुंबई के दक्षिण में 400 किलोमीटर दूर है, और ये एक इंडियन स्टेट है, यानी गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त है। 1961 तक ये पोर्टुगीज के अधीन था, यानी यहाँ पर पुर्तगाली लोग राज करते थे। उसके बाद ये भारत का एक हिस्सा बन गया था। ये जो आप स्टोरी पढ़ने वाले हैं, इसमें लेखक उन दिनों को याद करता है जब वो बच्चा हुआ करता था और गोवा में अभी भी पुर्तगाली यानी पोर्टुगीज का रूल था। पुर्तगाली लोग अपनी फेमस ब्रेड को खाने के शौकीन थे, तो ये बेसिकली ब्रेड खाया करते थे, और लोव्स ऑफ ब्रेड, जिन्हें हम हिंदी में पाव रोटियां कह सकते हैं, उन्हें ये खाया करते थे। अब वो खाने वाले तो जा चुके हैं, लेकिन जो वो बेकर्स हैं, जो उन्हें बनाते थे, वो अभी भी वहां पर हैं, और उनकी अपनी ही इम्पोर्टेंस वहां पर है। जो पारंपरिक बेकर्स हैं, अभी भी गली गली घूमकर अपने ब्रेड को बेचते हैं। लेखक याद करता है कि किस तरह बचपन में जब बेकर्स आया करते थे, तो वो उनकी बहुत ज्यादा वेट किया करता था, वो एक्साइटेड रहता था कि ना जाने कब बेकर्स आएंगे उनके पास, हमारी फेवरेट ब्रेड्स होंगी। जो बेकर्स हैं वो अपने सिर पर टोकरी लिए हुए होते थे और अपने साथ बैम्बू स्टिक लेकर आते थे, और उनकी बैम्बू स्टिक से ठक ठक और झनकार की आवाज जो आती थी उससे पता चल जाता था कि हाँ वो आ गए हैं। और वो सवेरे सुबह सुबह आया करते थे, वो बड़ों के लिए तो ब्रेड लोव्स लेके आते थे यानी पाव रोटियां लेकर आते थे, और जो बच्चे हैं उनके लिए ब्रेड बैंगल्स लेकर आते थे यानी छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े लेकर आते थे जिनके बीच में खाली स्पेस हुआ करता था, जैसे गोल टुकड़ा है और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, एक रिंग की तरह वो ब्रेड को लेकर आते थे। उनके बैम्बू की झनझन करती ठक ठक और ये सब आवाजें बच्चों की नींद खोल देती थी और वो उठ जाते थे। वो अपने मन पसंद ब्रेड बैंगल्स को पाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते। लेखक कहता है कि उसे अभी भी उन ब्रेड बैंगल्स की खुशबू याद है। वह उन्हें खाने के लिए इतना एक्साइटेड रहता था कि अपने दांतों को ब्रश कर भी नहीं करता था और अपने मुंह को भी नहीं धोता था, इसकी उसे कोई भी परवाह नहीं होती थी। लेखक मजाकिया वे में ये भी कहता है कि शेर भी तो अपने दांतों को कभी ब्रश नहीं करता था। गर्मा गर्म चाय हर चीज को इतनी अच्छी तरह साफ कर देती थी कि ब्रश करने की जरूरत पड़ती ही नहीं थी। लेखक का ये भी कहना है कि बेकर्स की उपस्थिति के बिना अगर बेकर्स किसी पार्टी, शादी या किसी भी धार्मिक उत्सव में नहीं हो तो उस बारे में सोचा ही नहीं जा सकता, यानी वो पार्टी वो शादी सब कुछ बेकार हो जाता है। पुर्तगाली शासन के दिनों में बेकर्स की एक अलग ही ड्रेस हुआ करती थी, एक यूनिफॉर्म हुआ करती थी जिसे कबाई कहा जाता था। ये घुटनों के नीचे तक पहुंचने वाली लंबी सी फ्रॉक हुआ करती थी। उसके बाद लेखक के बचपन के दिनों में बेकर्स एक ऐसी निक्कर पहनने लगे जो घुटनों के नीचे तक पहुंचती है। बेकर्स पैसे वाला इंसान हुआ करते थे और वो देखने में किसी कटहल जैसे लगते थे, ऐसा लेखक कहते हैं। और लेखक ये भी कहते हैं कि वो काफी खुश नजर आते थे। तो स्टूडेंट्स, हमने समरी को पढ़ लिया है, अब हम लाइन टू लाइन इस स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या बताया गया है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. The Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age-old, time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The thud and jingle of, चलिए students, page number 86 पर आइए, the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as padder in Goa. तो यहाँ पर जो राइटर हैं, हमारे लेखक हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनसे अक्सर हम सुनते हैं पुराने पुर्तगाली समय के अच्छे दिनों के बारे में, और वो बताते हैं कि कैसे वहाँ उस टाइम पे पाव रोटियां बनती थी जो कि बहुत ज्यादा फेमस थी, यानी ब्रेड लोव्स बनते थे। वैसे ब्रेड लोव्स खाने वाले लोग तो गुम हो गए हैं, यानी वो तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उन्हें बनाने वाले लोग अभी भी यहाँ पर हैं। वो हमारे बीच अब भी मिश्रण यानी मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, सांचों में ढालने वाले लोग भी यहाँ पर हैं, और फिर उसे पकाने वाले, उसे बेक करने वाले लोग भी यहीं पर हैं। समय की कसौटी पर पूरा उतरने वाली भटियां भी अभी तक वहां पर है, यानी भटियां भी वो खराब नहीं हुई है जिसमें उन ब्रेड को पकाया जाता था। उन भट्टियों की आग भी अभी तक बुझी नहीं है, और ट्रेडिशनल बेकर्स के बैम्बू स्टिक के ठक ठक और झनकार जो सुबह उनके आने के बारे में बताती थी कि हाँ वो आ गई हैं, कुछ जगहों पर अभी भी सुनी जा सकती हैं। हो सकता है कि फादर जीवित ना हो, यानी पिता जीवित ना हो, लेकिन बेटा अभी भी परिवार के जो पुराने टाइम से चला आ रहा व्यापार है, व्यवसाय है, उसे अभी भी चला रहा है। इन बेकर्स को गोवा में भी अब भी पेडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some paskin or bastin, the maidservant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. फिर राइटर बताते हैं गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर्स हमारे मित्र, साथी और गाइड भी थे, यानी वो हमें रास्ता भी दिखाया करते थे। पथ दर्शक जिसे हम कहते हैं, यानी कोई जो हमें रास्ता दिखाए, ये बताए कि तुम्हें कोई इसी काम को ऐसे करना है, वो दिन मैं कम से कम दो बार आया करते थे। एक बार सुबह जब वो अपने बिक्री के दौरे पर निकलते थे और फिर दोबारा जब वो अपनी पूरी टोकरी को खाली कर लौट रहे होते थे। उनकी बैम्बू स्टिक की झनझन और ठकठक उन्हें नींद से जगा देती थी और सारे बच्चे उनसे मिलने के लिए और इन्हें ग्रीट करने के लिए, यानी उनसे बातें करने के लिए भाग उठते थे। फिर लेखक पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों होता था? क्या ये बस ब्रेड लोव्स के प्यार की वजह से था? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ब्रेड लोव्स या पाव रोटियां तो घर की नौकरानी किसी पेस्किन या बेस्टिन के द्वारा लाई जाती थी, वो लाया करती थी। जिस चीज की बच्चों को बहुत ज्यादा वेट रहती थी वो होती थी पाव गजरे, जिन्हें हम ब्रेड बैंगल्स कहते हैं, और सारे बच्चे उन्हें बहुत ध्यान से चुनते थे। कई बार एक अलग तरह की मीठी पाव रोटी होती थी, यानी जो उसका मिक्सचर होता था उसमें कुछ मीठा होता था, तो बड़े ही ध्यान से बच्चे उन्हें चुनते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन वर्टिकल बैम्बू। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. I can still recall the typical fragrance of those loaves. Loaves for the elders and bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why we should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. तो अब जो हमारे लेखक हैं वो कह रहे हैं कि जो बेकर्स हैं वो बड़ी म्यूजिकल एंट्री लेकर आते थे, यानी जो उनके पास बैम्बू स्टिक थी उसमें झन झन ठक ठक ऐसी आवाजें आती रहती थी। एक हाथ से तो वो अपनी बास्केट को, अपनी जो उन्होंने उठा रखी होती थी जिसके अंदर ब्रेड्स होते थे, उसे अपने सिर पर पकड़ते थे और दूसरे हाथ से वो बैम्बू स्टिक को पकड़ा करते थे और उसे जमीन पर पटका करते थे, यानी ऐसे आवाज करते हुए उसे हल्के हल्के से जमीन पर मारते हुए वो आवाज करते हुए आते थे। और जब वो घर में आते थे तो घर की औरतों को वो गुड मॉर्निंग यानी विश करते थे सुबह सुबह के टाइम पे, और उसके बाद अपनी बास्केट को उस बैम्बू के ऊपर खड़ा कर देते थे। और बच्चे जो होते थे उन्हें साइड में कर दिया जाता था, और उसके बाद जो ब्रेड थी, ब्रेड लोव्स थे, पाव रोटियां थी, उन्हें डिलीवर कर दिया जाता था, यानी लोग उन्हें ले लेते थे। लेकिन बच्चे भी हिम्मत नहीं हारते थे, वो भी अपने काम में लगे रहते थे। किसी तरह वो बेंच पर चढ़कर देख ही लेते थे उस बास्केट के अंदर। लेखक कहते हैं कि मुझे आज भी उन ब्रेड लोव्स के, उन ब्रेड की खुशबू याद है। लोव्स तो होते थे बड़े लोगों के लिए, यानी जो बड़ी ब्रेड होती थी वो बड़े लोगों के लिए, पाव रोटियां जिन्हें हम कहते हैं वो सिर्फ बड़े ही लेते थे और बच्चे लेते थे पाव गजरे यानी बैंगल्स, यानी वो रिंग शेप की जो ब्रेड है जो थोड़ी मीठी होती थी खाने में। और उसके बाद फिर लेखक कहते हैं कि हम इतना भी ध्यान नहीं करते थे कि हमें अपने दांतों को ब्रश करना है और अपने मुंह को धोना है, और ऐसा हम करें भी क्यों। लेखक कहते हैं कि जो दांत साफ करने हैं उसके लिए तो मैंगो लीव्स लानी पड़ेगी, यानी पहले तो टूथब्रश, टूथपेस्ट ये सब कुछ हुआ नहीं करता था। पहले तो आम के जो पत्ते हैं उनसे वो दांत साफ करते थे। तो वो ये सोचते थे कि इतनी मेहनत कौन करे कि जाकर आम का पत्ता देकर आए ताकि वो अपने दांत साफ कर सके, और ये इतना जरूरी भी क्यों है। आखिरकार जो शेर है वो भी अपने कभी दांत साफ नहीं करता है, और गर्म चाय उसे पीने के बाद तो सारी चीजें अपने आप एकदम साफ हो जाती हैं, वो सब कुछ अच्छे से धो देता है। स्टूडेंट्स अब यहाँ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जितनी स्टोरी हमने पढ़ ली है उसके बेसिस पर ही ये क्वेश्चंस है, आइए हम इन्हें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। गोवा में जो बड़े लोग हैं उन्हें किन चीजों की याद आती है। तो स्टूडेंट्स आप इसका आंसर लिखेंगे, दे आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, दे रिकॉल फॉन्डली द पोर्टुगीज पीपल एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। तो गोवा के जो बड़े लोग हैं उन्हें पुराने टाइम में जो पोर्टुगीज का शासन था, पुर्तगाली शासन था, उसकी याद आती है, और वो पुर्तगाली लोगों को और उनके फेमस ब्रेड लोव्स को यानी पाव रोटियों को याद करते हैं। क्वेश्चन 2, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। क्या ब्रेड बनाना आज भी गोवा में इतना ही पॉपुलर है, आप इसे कैसे जानते हैं। तो इसका आंसर है येस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, द सन्स स्टिल कैरी ऑन द प्रोफेशन ऑफ देयर फादर्स। तो इसका आंसर है हाँ, ब्रेड मेकिंग अभी भी गोवा में पॉपुलर है, जो बच्चे हैं वो अपने पूर्वजों के इस प्रोफेशन को अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे ब्रेड मेकर्स अभी भी गोवा में हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड। बेकर को यानी जो ब्रेड बनाता है उसे पकाता है उसे क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ही इज कॉल्ड पैडर, यानी उसे पैडर कहकर बुलाते हैं। क्वेश्चन 4, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। रोज किस समय बेकर यानी जो ब्रेड बेचने वाला है वो किस समय आता है, और बच्चे भाग कर उनसे मिलने क्यों जाते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ही केम इन द मॉर्निंग एवरी डे, द चिल्ड्रन रैन टू हिम फॉर देयर फेवरेट ब्रेड बैंगल्स। और बच्चे उनके पास क्यों जाते हैं, तो बच्चे इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें ब्रेड बैंगल्स चाहिए होते हैं, और सुबह सुबह के समय जो हमारा बेकर है वो आता है ब्रेड की डिलीवरी करने के लिए यानी ब्रेड को बेचने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम जल्दी से पेज नंबर 87 पर चलते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड नोन एज बॉल, जस्ट एज पार्टी और फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bowling halls are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential. तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो ब्रेड है उसका होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर ओकेजन के लिए। वो कहते हैं मीठी ब्रेड के बिना जिसे बोल कहा जाता है, वो जो मैरिज में आप गिफ्ट देते हैं, किसी की शादी होती है तो जो गिफ्ट देते हैं उस बोल के बिना वो गिफ्ट अधूरा रह जाता है। जिस तरह ब्रेड के बिना कोई पार्टी या दावत अपना आकर्षण खो देती है, उसके अंदर कोई चार्म नहीं रहता। इस बात को समझाने के लिए एक गांव में एक बेकर कितना ज्यादा जरूरी है, इस बात को समझाने के लिए ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है कि घर की मालकिन को अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर सैंडविच जरूर तैयार करना होता है, क्रिसमस और त्योहार के लिए केक और बोलिनहा जरूरी चीजें होती हैं। इस तरह गांव में जो बेकर है उनकी भट्टी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर ओकेजन पे, हर त्योहार पे, हर गेट टुगेदर पे, हर पार्टी पे ब्रेड की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है गोवा के कल्चर में। और मीठी ब्रेड उसमें दी जाती है जो एक शुभ अवसर भी होता है, जैसे शादी हो गई या कोई भी धार्मिक काम हो गया, उसमें भी ब्रेड की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो गोवा के कल्चर में ब्रेड बिल्कुल मिल चुकी है, इसीलिए बेकर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है वहां पर, और बेकर्स की भट्टी का हर गांव में होना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder. जो ब्रेड बेचने वाले या जो बेकर हैं, उन दिनों में एक अलग तरह की ड्रेस पहना करते थे जिसे कहते हैं कबाई। ये एक सिंगल घुटनों से नीचे तक की फ्रॉक हुआ करती थी, लेकिन जब लेखक छोटे थे तो उस टाइम पे जो बेकर्स हैं, जो ब्रेड बेचने वाले हैं, उन्होंने शर्ट और ट्राउजर्स यानी पैंट्स पहननी शुरू कर दी जो घुटनों से नीचे तक की थी, यानी वो फुल लेंथ, पूरी पैंट से तो थोड़ी कम थी लेकिन हाफ पैंट्स आधी पैंट से थोड़ी ज्यादा थी। और जब भी कोई इस तरह के हाफ पैंट्स पहनता है जो घुटनों से नीचे आती है, आधी पैंट्स जो घुटनों से नीचे आती है, तो गोवा में लोग जरूर उस पर कमेंट करते हैं कि तुम तो बिल्कुल एक पैडर जैसे तैयार होकर आए हो। पैडर कौन? पैडर यानी बेकर। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. He, his family, and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. The students, यहाँ लेखक बताते हैं कि जो बेकर है वो अपने पैसे महीने के आखिर में लिया करता था और महीने का सारा हिसाब किताब किसी दीवार पर एक पेंसिल से मेंटेन किया जाता था, यानी वहां पर लिखा जाता था। फिर लेखक कहते हैं कि बेकिंग से काफी ज्यादा फायदा होता था, ये एक फायदेमंद प्रोफेशन था, एक ऐसा प्रोफेशन था जिससे बहुत ज्यादा मुनाफा होता है उन दिनों में। बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरा, वो उसका परिवार और उसके सारे नौकर हमेशा खुश और उनके पास ऐसा दिखता था कि बहुत पैसा है। उनका प्लम फिजिक यानी उनका भरा पूरा शरीर इस बात की गवाही देता था। आज भी अगर कोई पर्सन थोड़ा प्लम फिजिक यानी भरे पूरे शरीर के साथ हो तो उसे यही कहा जाता था कि वो एक बेकर जैसा लग रहा है। तो ये थी स्टोरी स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए हम उन्हें डिस्कस करते हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन 1। मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज अ मस्ट। स्टूडेंट्स, आपको ये मैच करना है कि क्या मस्ट है, यानी क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या नेसेसरी है। तो फर्स्ट है एज मैरिज गिफ्ट, तो मैरिज गिफ्ट में क्या जरूरी है, तो इसका आंसर है स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट, पार्टी या फीस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये है ब्रेड। फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट, डॉटर यानी बेटी की सगाई पर क्या जरूरी है, तो ये है सैंडविचेस। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए क्या जरूरी है, तो इसका आंसर है केक्स एंड बोलिनहास। Question 2. What did the bakers wear in the Portuguese days when the author was young? तो आपको बताना है कि बेकर क्या पहनता था जब पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली शासन था यहाँ पर, और जब बेकर छोटा था यानी ऑथर छोटा था तब वो बेकर कैसी ड्रेस पहनते थे। तो स्टूडेंट्स, जब पुर्तगाली शासन था तब तो वो एक सिंगल पीस की लॉन्ग स्कर्ट पहना करते थे और जब ऑथर छोटा था तब वो शर्ट और ट्राउजर्स पहनते थे जो घुटनों से नीचे तक की होती थी। क्वेश्चन 3, हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, व्हाई? किसे ये कमेंट सुनने को मिलता था कि ये तो बिल्कुल पैडर जैसा लग रहा है? तो इसका आंसर है कि जो भी पर्सन जो आधी पैंट में हो, जिसकी पैंट घुटनों से नीचे तक की हो, उसे ये कमेंट सुनने को मिलता था। क्वेश्चन 4, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ बेकर रिकॉर्डेड? बेकर के मंथली अकाउंट्स कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते थे, कहाँ पर लिखे जाते थे? तो इसका आंसर है दे वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल एंड पेंसिल, यानी किसी दीवार पर पेंसिल की हेल्प से उन्हें रिकॉर्ड किया जाता था। क्वेश्चन 5, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है इट मीन्स हैविंग अ वेरी प्लम्प बॉडी, यानी बड़ा भरा पूरा शरीर, हट्टा कट्टा शरीर जिसका हो उसे हम कहते हैं जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, जो फूला हुआ हो, भरा पूरा जिसका शरीर हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 88 पर आइए, जहां पर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे टेक्स्टुअल क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, क्वेश्चन 1, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो आपको बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, क्या वो सही हैं या गलत हैं। फर्स्ट, द पैडर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स। पुराने समय में पैडर यानी बेकर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था, तो इसका आंसर है ट्रू। सेकंड, पैडर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवन विलेजेस। गोवा के गांव में आज भी पैडर्स यानी बेकर्स रहते हैं, तो इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन 3, द पैडर्स वेंट अवे विद द पोर्टुगीज। पैडर्स पुर्तगालियों के साथ चले गए थे, तो इसका आंसर है फॉल्स। 4, the padders continue to wear a single piece long frock. Padders आज भी वो single piece का लंबी frock को पहनते हैं, तो इसका answer है false. Part 5, bread and cakes were an integral part of Goan life in old days. Bread और cake Goa के लोगों का एक बहुत ज़्यादा important part बन चुका था उनकी life का पुराने समय में, तो इसका answer है true. Part 6, traditional bread baking is still a very profitable business. Traditional bread baking यानि जैसे bread बनाई जाती थी पहले के समय में, वो आज भी मुनाफा देती है, तो इसका answer है true. Part 7, padders and their families starve in the present time. आज के समय में padder और उनका परिवार भूखा मरता है, तो इसका answer है false. Question 2, Is bread an important part of Goan life? How do you know this? यहाँ पूछा गया है कि क्या bread गोवा के लोगों की life का एक important part बन चुकी है, important हिस्सा बन चुकी है, और आप कैसे जानते हैं कि वो बन चुकी है या नहीं बन चुकी? तो इसका answer आप लिखेंगे, Yes, bread is an important part of Goan life. No party, marriage or religious festival can be meaningful without bread. यानी हाँ, गोवा की लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुकी है, शादी ब्याह हो, कोई पार्टी हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, सब के अंदर ब्रेड की अपनी ही एक इम्पोर्टेंस बन चुकी है। क्वेश्चन 3, टिक द राइट आंसर विच इज द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग। आपको सही आंसर को टिक करना है और आपको बताना है कि जो टोन है ऑथर की वो क्या है जब वो ये सभी बातें बोल रहा है। फर्स्ट, द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। तो जब ऑथर ये कह रहा है कि जो ठक ठक और झनकार की आवाज है पुराने टाइम में बेकर के बैम्बू की, वो अभी भी कुछ जगहों पर सुनी जा सकती है, तो जब ये बोल रहा है हमारा लेखक, तो इसमें लेखक के क्या टोन है, लेखक किस वे में इसे बोल रहा है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है होपफुल। सेकंड, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। जब लेखक ये कह रहा है कि शायद अब इनके पिता जिंदा नहीं हैं, लेकिन जो बच्चा है वो अभी भी पारिवारिक व्यवसाय को चलाए हुआ है, तो लेखक की क्या टोन है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है नॉस्टैल्जिक। थर्ड, आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। जब लेखक कहते हैं कि अभी तक मुझे उन ब्रेड की खुशबू याद है, तो इसमें लेखक की क्या टोन है? तो इसका आंसर है नॉस्टैल्जिक। फोर्थ, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। जब लेखक ये कहते हैं कि शेर कभी अपने दांत साफ नहीं करता, गर्म चाय से सब कुछ अपने आप ही साफ हो जाता है, तो लेखक की क्या टोन है? तो इसका आंसर है नॉटी या फनी। फिफ्थ, केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। जब लेखक कहते हैं कि केक और बोलिनहास क्रिसमस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें उनकी टोन है मैटर ऑफ फैक्ट। पार्ट सिक्स, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, दे ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रॉस्परस। जब लेखक कहते हैं कि जो बेकर है, ब्रेड बेचने वाला है, वो और उसकी फैमिली कभी भूखी नहीं मरती, वो हमेशा ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा खुश है और उनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, तो इस बात पे लेखक क्या बता रहे हैं कि उनकी कैसी टोन है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है मैटर ऑफ फैक्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जो है राइटिंग। इन दिस एक्सट्रैक्ट ऑथर टॉक्स अबाउट ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज ऑन द लेफ्ट, देन राइट अ पैराग्राफ अबाउट द ऑथर्स चाइल्डहुड डेज। तो स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में या इस एक्सट्रैक्ट में हमने ये पढ़ा है कि कैसे जब ऑथर छोटा था, लेखक छोटा था, तो कैसे ब्रेड बनाई जाती थी और बेची जाती थी, और इससे हमें कुछ पता चलता है जो ऑथर है उसके बचपन के दिनों के बारे में। तो आइए यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स हम देकर एक पैराग्राफ लिखेंगे बाद में ऑथर के बचपन के दिनों के बारे में। द वे ब्रेड वॉज बेक, ऑथर के बचपन में ब्रेड कैसे बेक की जाती थी? तो वो बेक की जाती थी फर्नेसेस, तो इन फर्नेसेस यानी भट्टियों में। द वे द पैडर सोल्ड ब्रेड, पैडर कैसे बेचा करता था? तो पैडर बास्केट में लाया करता था, टोकरी में लाया करता था ब्रेड को, और साथ में लेकर आता था एक बैम्बू स्टिक। व्हाट द पैडर वोर, पैडर क्या पहनता था? तो पैडर पहनता था एक सिंगल पीस की लॉन्ग फ्रॉक, लेकिन जो लेखक है उसके बचपन में वो पहनने लग गया था शॉर्ट्स और घुटनों से नीचे तक की पैंट्स। When the pedder was paid, pedder को कब पे किया जाता था, उसे कब पैसे दिए जाते थे? तो वो दिए जाते थे महीने के आखिर में। How the pedder looked, pedder यानी जो बेकर था वो कैसा लगता था? तो वो लगता था बिल्कुल हृष्ट पुष्ट, यानी हट्टा कट्टा भरा पूरा उसका शरीर था, प्लम्प बॉडी थी उसकी। चलिए स्टूडेंट्स अब पेज नंबर 89 पर आइए। कंपेयर द पीस फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट बिलो विद द अदर पीस ऑन गोवन बेकर्स ऑन राइट। व्हाट मेक्स द टू टेक्स्ट सो डिफरेंट, आर द फैक्ट्स सेम, डू बोथ राइटर्स गिव यू अ पिक्चर ऑफ द बेकर। तो स्टूडेंट्स आपको ये दोनों टेक्स्ट पढ़ने हैं इस एक्टिविटी में, और उसके बाद आपको ये बताना है कि इन दोनों टेक्स्ट में क्या डिफरेंसेस हैं और कौन से फैक्ट सेम हैं। क्या दोनों राइटर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो बेकर होते थे पुराने टाइम में गोवा में, वो बिल्कुल एक जैसे होते थे या कोई डिफरेंसेस उनमें होते थे? तो आपको इन टेक्स्ट को पढ़ना है और डिफरेंसेस देखने हैं। क्वेश्चन टू, नाउ फाइंड अ ट्रेवल ब्रोशर अबाउट अ प्लेस यू हैव विजिटेड, लुक एट दिस डिस्क्रिप्शन इन द ब्रोशर, देन राइट योर ओन अकाउंट एडिंग डिटेल्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस टू गिव द रीडर अ पिक्चर ऑफ अ प्लेस रेदर देन एन इम्पर्सनल फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। स्टूडेंट्स आपने अगर कोई जगह विजिट की है, किसी जगह आप गए हैं घूमने के लिए, तो आपको उसका ट्रेवल ब्रोशर उठाना है, यानी एक ब्रोशर आता है, उसमें लिखा होता है कि कौन कौन सी जगह घूमने लायक है और आप क्या क्या कर सकते हैं उस जगह पर। उसे उठाकर वहां से कुछ डिटेल्स लेते हुए आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है उस जगह की, और इस तरह से लिखना है कि वो लोगों को समझ में आए। सिर्फ एक्चुअल डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए, आपको अपने आप से अपने एक्सपीरियंसेस से बताना है कि अगर वो जगह है तो उसमें कैसे कैसे आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ग्रुप डिस्कशन first part in groups collect information on how bakers bake bread now and how the process has changed over time. आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है कि बेकर्स आज के समय में कैसे ब्रेड बेक करते हैं, कैसे ब्रेड को पकाते हैं और कैसे ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया टाइम के साथ चेंज हो गई है. क्वेश्चन टू, देयर आर अ नंबर ऑफ क्राफ्ट बेस्ड प्रोफेशंस व्हिच आर डाइंग आउट. पिक वन ऑफ द क्राफ्ट्स बिलो. मेक अ ग्रुप प्रेजेंटेशन टू द क्लास अबाउट द स्किल्स रिक्वायर्ड एंड द पॉसिबल रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ द क्राफ्ट. कैन यू थिंक ऑफ वेज टू रिवाइव दीज क्राफ्ट. स्टूडेंट्स, नीचे एक लिस्ट दी गई है जिसमें काफी सारी क्राफ्ट्स दी गई हैं, काफी सारी ऐसी कलाएं दी गई हैं जो आज के समय में धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं. आपको इनमें से किसी भी एक कला के ऊपर, किसी भी एक क्राफ्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है कि इस कला के लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए, क्या क्या आपको इक्विपमेंट्स चाहिए या क्या क्या आपको रिसोर्सेस चाहिए. इन सभी के बारे में आपको पता लगाना है और ये भी बताना है कि धीरे धीरे ये क्यों खत्म होती जा रही है ये कला, और ये भी बताना है कि इस कला को हम कैसे जिंदा रख सकते हैं, कैसे जीवित रख सकते हैं आज के टाइम में, ये कैसे अपने जो कला है वो वैसे के वैसे चल सकती है जैसे पुराने समय में चला करती थी. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. आपका होमवर्क है कि आपको यूनिट नंबर 7 की स्टोरी नंबर 1 को बहुत अच्छे से पढ़ना है और एक्सरसाइज में दिए गए सभी क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से आंसर करना है. बाय बाय.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद.